विहान आरवी के कमरे में घुस गया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उसने आरवी की चुनरी को उसके ऊपर से हटा दिया और बेतरतीबी से उसके चेहरे को, उसके होठों को अपनी हथेली से छूने लगा। आरवी छटपटाती रही, उसको छोड़ने को कहती रही, पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा। ठीक इसी वक्त नीचे गेट के पास आकर एक गाड़ी रुकी। पीछे से अर्पिता जी तो आगे से शान उतरा। शान का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। आखिर उसे जबरदस्ती यहां लाया गया था, वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। अर्पिता जी के लबों पर मुस्कान फैली हुई थी, पर जैसे ही उन्होंने चौखट के अंदर कदम रखा, वहां का शोर शराबा चीख पुकार सुनकर उनके दिल दहल उठा। कदम जहां थे वहीं रुक गए और मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उनका दिल किसी अनहोनी का सोचकर घबराने लगा। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहीं शान भी बिना किसी भाव के उनके पीछे चला गया। अर्पिता जी सीढ़ियों पर से दौड़ती हुई ऊपर पहुंची और फिर वहां जमी भीड़ को देखकर बोली, क्या हो रहा है यहां? उनकी आवाज़ सुनकर सबने उनके तरफ देखा और सामने से हटने लगे। उनकी आवाज़ सुनते ही अनुपमा जी उनके तरफ घूम गई। उन्हें अपने सामने देखकर उन्होंने रोते हुए कहा, अर्पिता, मेरी बेटी को बचा ले, कुछ भी करके मेरी बेटी को उस हैवान से बचा ले। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी बात सुनकर अर्पिता जी हैरान हो गई, पर उनके आंसुओं को देखकर उन्होंने खुद को संभाला और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, अनु तू चुप हो जा, मुझे आराम से बता कि क्या हुआ है। मैं हूं ना, मैं आरवी को कुछ नहीं होने दूंगी। आंटी, बातें बाद में पूछ लीजिएगा, अभी कुछ भी करके हमें ये दरवाज़ा तोड़ना होगा, वरना आज यहाँ अनर्थ हो जाएगा, रश्मि ने रोते हुए कहा। उनकी बात सुनकर और अंदर से आती चीखों की आवाज़ सुनकर वो समझ गईं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उन्होंने अनुपमा जी को समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा आरवी को, मैं कुछ करती हूँ। वो भागते हुए सीढ़ियों के पास पहुंची तो शान वहीं खड़ा था। उन्हें परेशान देखकर शान ने भी परेशान होकर कहा, क्या हुआ बड़ी माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? शान, क्या आप अपनी बड़ी माँ की जरा भी इज्जत करते हैं? उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए सवाल किया तो शान ने उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, बड़ी माँ, आप ये कैसा सवाल कर रही हैं? आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर ये सच है तो बिना कोई सवाल किए हमारी एक बात मानेंगे? उनका सवाल सुनकर शान ने झट से कहा, कहिए बड़ी माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए पत्थर की लकीर है। अब अर्पिता जी ने कुछ नहीं कहा, उसकी कलाई पकड़ी और उसे लेकर आरवी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शान को आता देख जहां सभी औरतों की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था, वहीं रश्मि की नम आंखों में चमक आ गई। अर्पिता जी उसे लेकर आरवी के कमरे के बाहर पहुंची और बंद दरवाजे को देखते हुए बोली, आज हमारी इज्जत आपके हाथों में है, अंदर एक लड़की के साथ गलत हो रहा है और आपके कुछ भी करके उन्हें बचाना है, समझ लीजिए यही आपकी बड़ी माँ की आज्ञा है। आपकी आज्ञा मेरे सर आंखों पर, अब उस लड़की को मेरे होते कोई हाथ नहीं लगा सकता, शान ने गुस्से में कहा और अगले ही पल एक जोरदार किक मारकर उसने दरवाजे को तोड़ दिया और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे रश्मि, अर्पिता जी, रजनी जी, अनुपमा जी भी अंदर घुस गए तो वहां का नजारा देखकर उनके कदम गेट पर ही रुक गए। आरवी जमीन पर पड़ी थी, उसकी चुनरी दूसरी तरफ पड़ी हुई थी और वो बिलख कर रोते हुए विहान को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जबकि विहान उसके जिस्म को चूमने की कोशिश कर रहा था। शान ने जैसे ही ये नजारा देखा उसकी आंखों में खून उतर आता। वो गुस्से में उनके तरफ बढ़ गया और उसका कॉलर पकड़कर उसको झटके से आरवी के ऊपर से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया। आरवी ने अपनी आंखें खोलकर देखा, अगले ही पल उसके चेहरे और बदन पर उसकी चुनरी आकर गिरी। शान जोर से चीखा, बड़ी माँ, इसे यहां से लेकर जाइए, इस हरामखोर को तो मैं देखता हूँ, हिम्मत कैसे हुई इसकी किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की। उसकी बात सुनकर अर्पिता जी और रश्मि जी आरवी की तरफ दौड़ पड़ी, वहीं अनुपमा जी वहीं बैठ गई। अपनी बेटी की यह हालत देख उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। रश्मि ने आरवी को उठाकर उसको कवर किया। आरवी बुरी तरह रो रही थी, अर्पिता जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो उनसे लिपट कर रो पड़ी। शान गुस्से में विहान की तरफ बढ़ा, तब तक वो भी संभल चुका था। उसने शान को देखकर गुस्से से चिल्लाकर कहा, कौन है तू और हमारे बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? जैसे तेरी हिम्मत हुई उस लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ ये सब करने की, और मैं कौन हूँ ये जानने की औकात नहीं है तेरी? साले, अकेली लड़की पर अपनी हिम्मत दिखाकर खुद को मर्द समझ रहा है, अब मुझसे जीत कर दिखा। शान गुस्से में गरजा और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। विहान के होंठ के किनारों पर खून की बूंदें उभर आईं। उसने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू कौन होता है हमारे बीच आने वाला? वो मेरी होने वाली बीवी है, मैं जो चाहूँ करूंगा उसके साथ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। होने वाली पत्नी है तेरी, अभी तक शादी हुई नहीं है, और शादी होने से भी किसी लड़के को किसी लड़की के मर्जी के खिलाफ उसके पास जाने का हक नहीं होता। इतना ही शौक था तो शादी के बाद करता जो करना था, कोई नहीं रोकता तुझे, पर यहाँ मेरे होते हुए तो मैं तुझे उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। शान गुस्से में गरजा और उस पर धुआंधार मुक्कों और लातों की बारिश करने लगा। विहान संभल तक नहीं पा रहा था, शान के सामने उसके लिए नामुमकिन था। शान ने उसको जमीन पर अटक दिया तो विहान उस तरफ जा गिरा जहां आरवी खड़ी थी, अर्पिता जी से लिपटी हुई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए। वो उठकर खड़ा हुआ और आरवी की बांह पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो यही है तेरा यार जिसके लिए तूने मुझे धोखा दिया। तुझे क्या लगता है ये तुझे मुझसे बचा लेगा? बिल्कुल नहीं। वो इससे आगे कुछ कहता कि अर्पिता जी ने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर दे मारा और आरवी की बाहों से छुड़ाते हुए गुस्से से गर्जी, सोचना भी मत इसे हाथ लगाने के बारे में वरना मेरा बेटा तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हारे जैसे घटिया सोच के आदमी को मैं अपनी बेटी के आसपास भी नहीं आने दूंगी। ए बुढ़िया, दूर रहे हमारे मामले से, वरना। उसने गुस्से में अर्पिता जी को धमकाते हुए इतना कहा ही था, एक जोरदार पंच उसके मुंह पर आकर लगा। इसके साथ ही शान की गुस्से भरी आवाज वहां गूंज उठी, दूर रहे मेरी बड़ी माँ से, अगर उन्हें एक खरोच खियाई तो आज यहाँ से तेरी लाश वापस जाएगी। वो गुस्से में गर्जा और एक बार फिर उस पर टूट पड़ा। अब अनुपमा जी ने अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ बढ़ गई। उन्होंने शान को पीछे रहने को कहा, फिर पिटाई खाकर अधमरे हो चुके वेहान के कॉलर को पकड़कर उसको खड़ा किया। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी हुई थी। उन्होंने एक के बाद उसके गालों पर 10-12 जोरदार तमाचे दे मारे और गुस्से से चिल्लाकर बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी बेटी को हाथ लगाने की? मैंने तो सोचा कि तुम एक अच्छे लड़के हो, मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुश रहेगी, पर नहीं, मैं गलत थी। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैं अपनी बेटी को अपने ही हाथों के नरक में धकेलने जा रही थी। अच्छा हुआ जो शादी से पहले ही तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। अगर ये शादी हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। तुम मेरी बेटी के लायक ही नहीं हो। तुम क्या उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हो जब तुम्हारी खुद की सोच इतनी घटिया और गिरी हुई है? उन्होंने एक बार फिर एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर रसीदते हुए गुस्से से चिल्ला कर कहा, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त, वरना मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी।
वो बेहद गुस्से में लग रही थी। विहान उनके तरफ बढ़ा पर शान उसके आगे आकर खड़ा हो गया और गुस्से से उसको घूरने लगा। विहान ने पीछे खड़ी अनुपमा जी और आरवी को देखा। आरवी उनसे लिपटकर रो रही थी। उसने नफरत से दोनों को देखा और धमकी भरे लहजे में बोला, तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगा। दोनों माँ बेटी की जिंदगी बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी विहान खुराना नहीं। मैं भी देखता हूँ कब तक बचाता है ये लड़का तुम दोनों को मुझसे, उसने शान को घूरते हुए कहा और लड़खड़ाते कदमों से वहां से जाने लगा। तभी रश्मि उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो बेहद गुस्से में लग रही थी। विहान कुछ समझ पाता उसे पहले ही रश्मि ने उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और गुस्से से चिल्लाई, ये मेरी दोस्त पर बुरी नज़र डालने के लिए। फिर एक और चांटा उसके दूसरे गाल पर जमाते हुए बोली, ये उसको छूने के लिए, उसे इतना दर्द देने के लिए, अब निकल जाओ यहां से। शान के होते हुए विहान जीत नहीं सकता था, ये बात वो जानता था, इसलिए उसे जलील होकर वो जहर के घूंट पीकर उसको गुस्से से घूरते हुए वहां से चला गया। शान ने अपने कॉलर के बटन को खोलते हुए गहरी सांस छोड़ते हुए सबको देखकर कहा, यहां कोई तमाशा नहीं चल रहा जो आप सब उसका मजा ले रहे हैं, हटिए यहां से। वो उसको हटाते हुए वहां से जाने लगा। फिर रुककर अर्पिता जी को देखकर बोला, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। इतना कहकर वो तेज कदमों से वहां से चला गया। आरवी ने अनुपमा जी के गले लगे हुए ही रोते हुए कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा। अनुपमा जी ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हमें अपनी बेटी पर पूरा विश्वास है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी बेटी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे उनके माँ बाप का सर किसी के आगे शर्म से झुके। और आप रो क्यों रही हैं? हमें तो खुश होना चाहिए कि समय रहते हमें विहान की सच्चाई पता चल गई और हमारी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। जिंदगी तो अब बर्बाद होगी, लड़का जो कुछ कहकर गया है दुनिया उसे ही सच मानेगी। और अब हमें नहीं लगता कि अभी जो यहाँ हुआ उसके बाद वो बारात लेकर इस दरवाजे पर आने वाला है। सब तैयारी होने के बाद अगर बारात नहीं आई तो क्या इज्जत रह जाएगी आरवी की? कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जिसके होने वाले पति ने उसे बदचलन कहकर उसको ठुकरा दिया हो? उनमें से एक औरत ने कहा तो उनकी बात सुनकर अर्पिता जी गुस्से से गर्जी, एक औरत होकर आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जो हुआ उसमें आरवी का तो कोई दोष नहीं है। हाँ बहन जी, जो हुआ उसमें उसकी नहीं आपकी गलती है, अब दूसरी औरत ने आगे आते हुए कहना शुरू किया तो अर्पिता जी उन्हें हैरानी से देखने लगी।